आज इस गहन चर्चा में स्वागत है। हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने वाले हैं।
जी, धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण।
हाँ, ये पूज्य गुरुदेव का वो चिंतन है जो धर्म के मतलब संस्थागत स्वरूप का उपयोग करके लोगों को शिक्षित और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है।
बिल्कुल।
आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं की असली जड़ कहाँ है और पूज्य गुरुदेव के अनुसार धर्म के इस तंत्र से उसका समाधान कैसे निकल सकता है।
जी,
शुरुआत करते हैं श्रोत में दिए गायत्री मंत्र से। ये ध्वनि मन को शांत करती है। धीमी गति से पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
शांति।
तो पूज्य गुरुदेव एक बहुत बुनियादी बात कहते हैं।
जी।
कि दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ है मनुष्य का गिरता हुआ भावनात्मक स्तर।
हाँ, ये सुनने में बहुत सरल लगता है पर है बहुत गहरा। मतलब आप सोचिए।
हाँ।
प्रकृति के बाकी जीव, छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े पशु पक्षी तक, वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं और आमतौर पर दुखी नहीं होते।
हाँ, जब तक हम उन्हें परेशान न करें।
बिल्कुल। जब तक इंसान का दखल न हो तो सवाल ये है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी यानी मनुष्य वो इतना दुखी क्यों है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वजह है हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया, जो अक्सर मतलब बहुत निचले स्तर का होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा, सुविधाएं, बाहरी चीजें, ये सब असल सुख की गारंटी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूज्य गुरुदेव हमें ऋषियों की याद दिलाते हैं।
अच्छा।
उनके पास क्या था, आप सोचिए। पहनने को शायद एक लंगोटी, पीने के पानी के लिए कमंडल, रहने को घास फूस की झोपड़ी।
हाँ, न्यूनतम साधन।
न्यूनतम, फिर भी वे सबसे सुखी, सबसे उन्नत, सबसे ज्ञानी माने गए। उन्होंने ये दिखाया कि ऊंचा भावनात्मक स्तर हो तो अभाव में भी शांति और संतोष संभव है।
और इसका दूसरा पहलू, जैसे रावण का उदाहरण आपने दिया।
बिल्कुल। रावण का उदाहरण देखिए, सोने की लंका थी, अतुलनीय बल था, प्रकांड विद्वत्ता थी, सब कुछ था।
हाँ, सब कुछ।
लेकिन भावनाएं कैसी थी? अहंकार, वासना, क्रोध, और नतीजा खुद भी दुखी रहा और पूरी दुनिया में दुख फैलाया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि खून खराब हो तो कितनी भी मरहम लगा लो, फोड़े फुंसियां निकलती रहेंगी। इलाज तो अंदर से होना है।
सही कहा, ये बात तो बहुत गहरी है। पूज्य गुरुदेव भारत के अतीत की भी बात करते हैं, है ना, जब उसे स्वर्गादपी गरियसी कहा जाता था।
जी हाँ, वो याद दिलाते हैं कि प्राचीन भारत में आज जैसी बिजली नहीं थी, नहरें नहीं थी, पक्के मकान, तेज गाड़ियाँ, ये सब नहीं था।
हाँ, आज के पैमाने से देखे तो साधन कम थे,
बहुत कम। फिर भी उस धरती को स्वर्ग से भी महान कहा गया। देवता भी यहाँ जन्म लेने को तरसते थे। क्यों?
क्यों?
क्योंकि लोगों का भावनात्मक स्तर ऊंचा था, आपस में स्नेह था, सहयोग था, भरोसा था, अपनी जरूरतों पर नियंत्रण,
मतलब संयम।
हाँ, अच्छा आचरण।
हाँ।
सेवा की भावना। और एक बहुत जरूरी चीज, मितव्ययता।
मितव्ययता मतलब कम खर्च।
हाँ, कम खर्च, फिजूल खर्ची का न होना।
हाँ।
लोग जरूरत भर का इस्तेमाल करते थे, दिखाते नहीं थे।
और आज की स्थिति देखें तो
एकदम उलट लगती है।
साधन बढ़ गए पर शांति,
शांति घट गई, यही तो विडंबना है।
हाँ।
आज शिक्षा है, विज्ञान है, चिकित्सा है, सब पहले से बेहतर है, लेकिन हम ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा असंतुष्ट हैं, ज्यादा उलझे हुए हैं।
हाँ, बीमारियां भी बढ़ गई हैं।
बिल्कुल। और वजह फिर वहीं पर आ जाती है, भावनाओं का गिरना और फिजूल खर्ची, मतलब अपव्यय का बढ़ना।
यहीं पर शायद पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना की जरूरत महसूस हुई होगी।
हाँ।
कि इस गिरावट को कैसे रोका जाए।
निश्चित रूप से युग निर्माण योजना का लक्ष्य ही यही एक था, इस भावनात्मक गिरावट को रोकना और इंसान की सोच को बदलना।
विचार क्रांति जिसे कहा गया।
हाँ, विचार क्रांति या ज्ञान यज्ञ। मानना यह है कि अगर हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा नजरिया बदल जाए तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगेंगी।
अच्छा।
हजारों समस्याओं का अलग अलग इलाज करना तो संभव नहीं है, है ना, जड़ को पकड़ना होगा।
सही बात है। लेकिन इतने सारे रास्ते हो सकते थे, लोक शिक्षण के, धर्म तंत्र यानी धर्म की जो संस्थागत व्यवस्था है उसी को माध्यम की चुना गया, ये थोड़ा सा अलग लगता है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और पूज्य गुरुदेव ने इसे बहुत सोच समझ कर चुना। उन्होंने महसूस किया कि भारत की लगभग 80% आबादी, खासकर गांव में रहने वाली थोड़ी कम पढ़ी लिखी जनता, वो आज भी धर्म की भाषा ज्यादा आसानी से समझती है। रामायण, महाभारत, ईश्वर, आत्मा, पाप पुण्य, ये बातें उनके मन में बहुत गहरी बैठी हैं। इसलिए लोगों तक पहुंचने और उनके मन को बदलने के लिए इसे सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया,
सबसे प्रभावी माध्यम। और इसकी क्षमता कितनी आंकी गई थी? आपने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया था।
हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार भारत में करीब 7 लाख गांव हैं।
7 लाख?
जी। और इन गांवों में संत, महात्मा, बाबा, कथावाचक, ब्राह्मण, पुरोहित, ऐसे सब मिलाकर करीब 80 लाख व्यक्ति हैं।
80 लाख, मतलब हर गांव के पीछे औसतन 11 लोग।
हाँ, लगभग 11। आप सोचिए, अगर ये 80 लाख लोग सही मायने में चाहें तो क्या हर गांव को सुधारा नहीं जा सकता? शिक्षा, सफाई, सहयोग, नशा मुक्ति, सब कुछ संभव है।
ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। धर्म सत्ता में लोक शिक्षण की क्षमता राज सत्ता से कम नहीं है, जैसा आपने कहा।
बिल्कुल कम नहीं है, शायद ज्यादा ही हो सकती है अगर सही दिशा मिले।
लेकिन क्या ये विशाल तंत्र, ये 80 लाख लोग अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं? पूज्य गुरुदेव का क्या आकलन था?
उनका आकलन यही था कि ये तंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाया, मतलब दिशा थोड़ी भटक गई। युग निर्माण योजना का एक बड़ा प्रयास यही था कि धर्म तंत्र से जुड़े इन लोगों को सही दिशा दी जाए।
सही दिशा मतलब?
मतलब ये कि उन्हें समझाया जाए कि भाई, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पूजा पाठ या भोग प्रसाद की रिश्वत देकर खुश किया जा सके। ये सोच गलत है।
तो फिर सही समझ क्या है? ईश्वर की पूजा कैसे हो?
सही समझ ये है कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड ही ईश्वर का रूप है, विराट स्वरूप, हर कण में वही है।
अच्छा।
इसलिए इस सृष्टि की सेवा करना, खासकर मानव सेवा, जरूरतमंदों की मदद करना, जन कल्याण के काम करना, यही सच्ची ईश्वर पूजा है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन ठीक है, पर वो सीमित हो, और ज्यादा समय, ज्यादा शक्ति, ज्यादा साधन सेवा में लगें।
और यहीं पर बात संसाधनों की आती है जो मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के पास है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पहलू है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पूज्य गुरुदेव मंदिरों की अकूत संपत्ति का जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर वो मथुरा वृंदावन का उदाहरण देते हैं, जहाँ करीब 5,000 मंदिर है।
5,000?
जी। और कई मंदिरों में लाखों रुपए महीने का सिर्फ भोग प्रसाद में खर्च होता है।
लाखों रुपए सिर्फ भोग में?
हाँ। तो उनका सुझाव था कि ये पैसा सिर्फ पुजारियों या भोग पर खर्च न हो, इसका एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण में लगना चाहिए।
जैसे किस तरह का जन कल्याण? क्या सुझाव थे उनके?
उनका सुझाव बहुत क्रांतिकारी था। वो कहते थे कि इस पैसे से बेहतरीन विश्वविद्यालय खोले जाएं।
विश्वविद्यालय?
हाँ, लेकिन कैसे विश्वविद्यालय? जो केवल किताबी ज्ञान न दें, बल्कि जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, उनका अध्ययन करें और उनका समाधान देने वाले स्नातक तैयार करें।
अच्छा, ये तो बहुत अलग सोच है।
बिल्कुल, ऐसे युवा तैयार हों जो भारतीय संस्कृति का सही संदेश, सेवा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। उन्होंने गायत्री तपोभूमि का उदाहरण दिया कि देखो, हमारी इतनी सीमित आय है, उस समय करीब 15,000 मासिक थी।
हाँ।
उससे इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो सोचो मथुरा वृंदावन के सिर्फ एक बड़े मंदिर की आमदनी से ऐसी कितनी संस्थाएं चलाई जा सकते हैं।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो सार यही निकलता है कि असली उन्नति, असली प्रगति, वो बाहर के साधनों से उतनी नहीं आएगी
जितनी अंदर की भावनाओं को सुधारने और ऊंचा उठाने से आएगी।
बिल्कुल। और धर्म तंत्र, अगर उसे सही दिशा मिले।
हाँ, अगर वो अपने विशाल मानव संसाधन और अकूत संपत्ति का इस्तेमाल सेवा और जन कल्याण के लिए करे,
तो
इस भावनात्मक नव निर्माण में और लोगों को सही रास्ता दिखाने में ये एक बेहद शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है। सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, यही मूल मंत्र है।
ये वाकई गहरा विचार है। सोचने पर मजबूर करता है कि अगर धर्म के नाम पर एकत्र हुए ये सारे संसाधन, इतने सारे लोग, इतना पैसा, इतना प्रभाव, अगर ये सचमुच समाज की भलाई और सेवा की तरफ मोड़ दिए जाएं, तो हमारे समाज में कितना बड़ा, कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
बिल्कुल, ये प्रश्न हम सभी के लिए है। ओम शांति।